सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत उत्तराखंड के इस प्रथम संत समागम के अवसर पर कल से ही एक ऐसी आनंद की महसूसियत हो रही है। हर एक पहलू अपने आप में एक सुंदर रूप लिए हुए सामने आता चला गया और सभी पहलू बहुत सुंदर ढंग से निभाए गए। लगन और तन्मयता के साथ श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर हर हृदय इन सभी कार्यों में उपस्थित रहा। जहाँ पर भक्ति का आनंद लिया गया, भक्ति को सुदृढ़ किया गया, वहाँ पर मानवता इंसानियत को मजबूत करने के लिए और इस जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरणाएं भी दी गईं। बहुत सुंदर ढंग से जो भाव रखे गए वो किसी रूप में थे, चाहे इस ग्राउंड के IDPL के इस इलाके में, चाहे सड़कों से गुज़रे कल सुबह, तब भी यही संदेश दे रहे थे। कल दोपहर से रात्रि तक तब भी यही पैगाम दूसरे ढंग से सत्संग के रूप में दिया गया। आज दोपहर सेवादल के नौजवानों ने सेवादल की रैली के रूप में भी इन्हीं अहम पहलुओं को सबके समक्ष सुंदर ढंग से रखा। विशेषकर सेवा भाव वाले पहलू को, सेल्फलेसनेस को और सेल्फलेस सर्विस को, और उसके बाद फिर दोपहर से इसी पंडाल में ये सत्संग का रूप जो बना है, आज भी कल की तरह बहुत उत्तम भावनाएं श्रवण करने का मौका मिला है। कल भी आपने देखा कि अनेकों ऐसे देश की सेवा में लगे, प्रांत की सेवा लगे में लगे सज्जन, उन्होंने भाव भी रखे और इस प्रकार से शुभकामनाएं भी और सहयोग भी मिलता आया है। आज भी आपने श्रवण किया IDPL के GM साहब को भी, जिनका लगातार सहयोग मिला है, और इस तरह से ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह से भरपूर योगदान दिए हैं और हर हृदय से यही शुभकामना इनके लिए निकलती है। और आप सभी जहां यहां मिल बैठे हैं उत्तराखंड के प्रथम समागम के अवसर पर, आपने अभी सुनाई है, कल भी उसका जिक्र हुआ कि उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था ये इलाका भी, और 2001 से जब उत्तराखंड का अस्तित्व बना उसके बाद समागम तो होता रहा उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड को साथ जोड़ा गया। जैसे बिहार या झारखंड में हो तो वो दो प्रांतें जुड़ती हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का समूचा रूप होता है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का भी एक समूचा रूप ये लगातार चलता आ रहा था। लेकिन इस बरस ऐसा ही ध्यान आया कि उत्तराखंड को अलग से ये समागम का मौका और अवसर दिया जाए। और अभी ये भी जिक्र हुआ, जो अपनी भावनाएं रखी गईं कि ये दो दिन की बजाय 3 दिन की बात हो रही थी, तो दास सोच रहा था कि अन्य जितने भी प्रांतीय समागम हुए हैं उनको तो 1 दिन से 2 दिन में आने में कितने बरस लग गए और ये तो पहला ही 2 दिन से शुरू हुआ है। और ये तो 2 के भी कितने और दिन हो जाएं, फिर भी भक्तों की वो प्यास बुझती नहीं है, क्योंकि एक ऐसी खुराक मिलती है जिसके कारण ये मन दुरुस्त हो जाते हैं। तन के लिए भी खुराक ग्रहण की जाती है, तन को दुरुस्त रखने के लिए, लेकिन उससे कहीं अधिक मन के रोग इंसान को गिराते चले जा रहे हैं। तन का रोग तो ठीक है, इंसान के लिए कष्ट का कारण बनता है और परिवार जनों के लिए भी कष्ट का कारण बनता है। अगर परिवार में किसी को तन का रोग हो जाए तो उसके परिवार के सदस्य भी उसको महसूस करते हैं, उस दर्द को। लेकिन ये मन का रोग ऐसा रोग है, अगर ये मन दुरुस्त नहीं है तो ये अपना भी नुकसान, परिवार का भी नुकसान, और वहीं तक नहीं, समाज, देश और सारी मानव जाति के लिए नुकसान का कारण बन जाता है। तो इसलिए ये मन की भी दुरुस्ता होनी ये बहुत ज़रूरी है। और इस मन को एक ऐसी स्वच्छ खुराक मिले, जैसे तन के लिए भी हम कहते हैं कि इस तरह से पौष्टिक आहार लो जो आपके शरीर के लिए लाभदायक हो, न्यूट्रिशियस वैल्यू जिसकी अच्छी हो। तो ये मन का रोग, इसके लिए भी आहार अमृत के रूप में हो, जो विष का रूप है, विकारों का रूप है, घृणा नफरत की भावनाएं हैं, संकीर्णताएं हैं, खुदगर्जियां हैं, अहम अभिमान है, लोभ लालच है, तो ये एक ऐसी खुराक बन जाती है, इस मन को रावण बना देते हैं। इसी मन ने या राम बनना है या रावण बनना है, इसी मन ने देवता बनना है या दानव बनना है, यही मन ऊंचाइयों तक ले जाने वाला और यही मन गहरी खाई में ये मन गिराने वाला बन जाता है। तो इसलिए इस मन को खुराक अमृत के रूप में प्राप्त हो, और अमृत ये परमात्मा, ईश्वर, ये निराकार, ये रमा व राम, ये अकाल पुरख जो निर्मल पावन परम सत्ता है, इस प्रकार से ऐसे अमृत को धारण करके, इसको ग्रहण करके इस मन को भी वही निर्मलता और पावनता प्राप्त हो जाती है। तभी मानवीय गुण, ह्यूमन वैल्यू, उसकी कदर कीमत हमारे मनों में जाग जाती है। और जब वो ह्यूमन वैल्यूज की कदर करना सीख जाते हैं, फिर केवल अपने तक सीमित नहीं रहते हैं, वो अपनी खुदगर्जी तक नहीं रहते हैं, फिर हमारी सोच को और विशालता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन इस मन को वो रूप देने के लिए ये संदेश और ये पैगाम ये दिए चले जा रहे हैं, युगों युगों से दिए जा रहे हैं, सदियों से दिए जा रहे हैं। सतयुग का समय अभी हाल ही में आप होली मनाकर हटे हैं, जहाँ पर होली के को रंगों के रूप में, रंगों का त्यौहार माना जाता है, वहाँ पर ऐतिहासिक पहलू भी उसके साथ जुड़ा हुआ, भक्त प्रहलाद और पिता हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, तो दोनों वो बहन भाई वो किस कदर एक ऐसी प्रवृत्ति से युक्त हैं, ऐसे अहंकार से युक्त हैं, नारायण का यश सुनने को तैयार नहीं, चाहे अपना बेटा ही क्यों नहीं उसका उच्चारण कर रहा या उस नारायण के रंग में रंगा हुआ है, और उसी को समाप्त करने के लिए बहन भाई जोर लगा रहे हैं इतनी निर्दयता। तो वो सतयुग का समय हो या फिर त्रेता का समय हो, जहाँ भगवान राम, वहाँ पर हनुमान जी की अनन्य भक्ति, जहाँ पर शबरी का प्रेम, इसी प्रकार से अगर द्वापर की बात करते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण, वहाँ पर कंस और दुर्योधन इत्यादि, ऐसे वो अंधकारमय रूप, अहम वाले भी, लोभ वाले भी, कठोरता वाले भी, और कलयुग की बात करते हैं तो जहाँ पर حضرت عیسیٰ مسیح جی، یا پھر حضرت محمد صاحب، یا پھر شری گرو نانک دیو جی مہاراج سے لے کر شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج تک، یا پھر انیکوں بھکت مہاپر سنت جن اس دھرتی کے اوپر سمے سمے پہ اوترت ہوتے آئے، چاہے وہ کبیر جی کا روپ ہو یا روی داس جی کا روپ ہو، میرا بائی کا روپ ہو یا پھر بلے شاہ جی کا روپ ہو یا فرید جی کا روپ ہو، چاہے وہ تکارام جی نام دیو جی کا روپ ہو، چاہے وہ بوتنا ویمنا جی کا روپ ہو، چاہے تیاگ راج جی کا روپ ہو، سوامی ویویکانند جی کا روپ ہو، اتنے روپ اس دھرتی کے اوپر سمے سمے پہ یہی ایک من کو سندرتا پردان کرنے کے لیے اور مانویے قدر و قیمت کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنا یوگدان وہ دیتے آئے ہیں۔ لیکن انسان کی بھی ایسی بدقسمتی رہی ہے کہ انسان اس طرف بڑھتا نہیں ہے، اس کا من امرت کو دھارن کرتا نہیں ہے، یہ من وشے وکاروں میں ہی پڑا رہتا ہے، یہ من ستیہ کی طرف نہیں، یہ چھن بھنگور کی طرف زیادہ اس کا لگاؤ ہے۔ شاشوت رہنے والے اس پرم ستیہ کو آدھار بناتا نہیں ہے جیون کا، اور یہ مٹ جانے والا سنسار، یہ تن، یہ دھن، یہ سب کچھ جو ستھر رہنے والا نہیں ہے، جو بادل کی طرح ایک پل چھایا دیتا ہے اور دوسرے پل پھر کڑکتی دھوپ میں، کیونکہ بادل نے بکھر بھی جانا ہے، بادل نے ہوا کے جھونکے سے اڑ بھی جانا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سنسار جس کو متھیا کہا گیا ہے، سوپن کہا گیا ہے، جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ سپنے جو سنسار، لیکن انسان کا لگاؤ اور لگن اسی کی طرف زیادہ ہے، شاشوت کی طرف نہیں ہے، اس نرمل کی طرف نہیں ہے، اس کو ذہن دل و دماغ میں بٹھاتا نہیں ہے، ادھک سمے اس کو وسار کر ذرا غور کر کے اپنے اوپر ہی کیندرت ہوں۔ جب ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں چار پائی پہ لیٹے ہوئے، اور راتری کو جب پھر سے ہم سونے کی تیاری میں ہوتے ہیں، تو بیچ میں جتنا بھی سمے بیتتا ہے سارے دن کا، ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن مولیانکن کریں گے تو پائیں گے کہ سب سے زیادہ من میں سنسار ہی سمایا رہا، یہ رام یہ نراکار کے حصے میں تو بہت کم سمے آیا جو ہمارے ذہن میں رہا، سب سے کم ہمیں احساس اس کا رہا، سب سے کم سمرن اس کا رہا، اور یہ سنسار اور پدارتھیں اور پوزیشنیں اور باقی ایسے لوبھ لالچ کام واسنائیں اتیادی، انہوں نے ہی ہمیں ہمارے من کو راحت نہیں دی، اسی میں یہ من جکڑا رہا سارا دن۔ اور سارے دن کی آپ بات کریں، داس اکثر کہتا ہے کہ سوئے سوئے بھی یہ سنسار ہی من میں بسا ہوتا ہے، اس لیے سپنے بھی ہم سنسار کے ہی دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس قدر ایک دن کی بات نہیں ہے، مہینے سال ہماری عمر تو بڑھتی چلی جاتی ہے، عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، سال اور اس میں جڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ستیہ، یہ پرماتما، یہ ایشور، یہ نراکار، اس کا ہم پربھاو گرہن نہیں کرتے ہیں، نہ ہی سنتوں کی شکشاؤں کا اثر ہم لیتے ہیں۔ تو آج مہاپرش سنت جن وہ یہی ایک احساس کرا رہے ہیں کہ احساس کریں کہ جیون کا مہتو کس کے کارن بنتا ہے، یہ جیون جو ہمیں مالک نے دیا منوشیہ جنم کے روپ میں، اس کو سب سے اونچی یونی کیوں مانی جاتی ہے، اس جنم کو پاتے ہیں تو اس کو ہیرے جیسا جنم امولک کیوں مانا جاتا ہے، یہ انسان نے کبھی غور نہیں کیا ہے اور دوڑتا چلے جاتا ہے، اس بھاگ دوڑ میں ہی ساری عمر بتا دیتا ہے اور ہاتھ پلے کچھ رہتا نہیں ہے، خالی آتا ہے اور خالی ہی چلا جاتا ہے، الٹا बोझ और जोड़कर साथ जाता है, देनदारी और ज़्यादा जोड़कर साथ जाता है। ये मालिक को विसार कर ये सारा समय बिता देता है, लेकिन इंसान तू तो विसार देता है लेकिन मालिक तो नहीं विसारता है। इसके आगे तो तेरी पेशी होनी ही होनी है। जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है कि क्रेडिटर्स हैव बेटर मेमोरी देन डेब्टर्स, कि जो जिन्होंने देना है वो अक्सर भूल जाते हैं लेकिन लेने वाले को तो याद रहता है कि मैंने लेना है। तो ये हिसाब भी इंसान तूने देना है लेकिन भूला हुआ है, लेकिन लेने वाला नहीं भूला हुआ है। वो तो तेरे एक एक सोच, तेरे विचार, तेरी धड़कने, तेरी चाल, इंसान तो सीमित है, दीवार के जिस तरफ तू है उस तरफ को तो जानते हैं, तू दीवार की दूसरी तरफ है तेरे बारे में नहीं जानते, और दीवार की इस तरफ भी है इतनी चतुराई से तेरा हाथ चलेगा, तेरी निगाहें चलेंगी कि सामने खड़ा हुआ भी अंदाज़ा नहीं लगाएगा कि तूने क्या किया है, और दीवार के दूसरी तरफ तो बात दूर की है। लेकिन मालिक ये तो उपस्थित है, आठों पहर उपस्थित है, कण कण में उपस्थित है। इसीलिए अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि जानन हार प्रभु ए जेड़ा जाने सारे गैबानू, इस तो किवें छुपा सकता है बंदा अपने ऐबानू, इससे कहाँ पर छुपा सकता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन एहसास कराते हैं कि इंसान अमोलक जन्म इंसानी तुम्हें मिला, लेकिन तूने हीरे जैसे जन्म का क्या हाल किया है, तूने इसकी क्या कीमत डाली है, तूने कौड़ी कीमत डाली है। इसीलिए कहा कि हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, कि ये कौड़ियों के भाव गंवा देता है। एक रास्ते से गुजरते हुए राजा और उसका वजीर साथ और कुछ सिपाही साथ, जाते जाते रास्ता कुछ भटक गए, एक इंसान मिला बहुत गरीबी की हालत में, और उससे पूछा क्या करते हो, बस करना क्या है, यहाँ पर लकड़ियाँ काटता आ रहा हूँ और उन लकड़ियों को बेचता हूँ, अपने घर का भी चूल्हा जलाता हूँ, उसी से गुजरान होता है, और अब इतने वर्ष मैं जब किशोरावस्था में था तब से चल रहा है सिलसिला, अब इतनी उम्र बढ़ गई है और आसपास कोई ऐसा दरख्त नज़र नहीं आता है, अब बड़ी मायूसी है। तो राजा ने वज़ीर को कहा कि अच्छा, इसको वो फलां जगह जो बाग है हमारा चंदन का, वो इसके हिस्से में ला दो, इसको दे दो, और वो दे दिया गया उसको। और फिर कई बरस बीत गए और कई बरसों के बाद फिर राजा वहाँ से गुज़रा। राजा की भी बहुत उम्र हो चुकी थी, वज़ीर की भी और उस इंसान की भी, और उसके आगे भी अब उसके बेटे के आगे ग्रैंड चिल्ड्रन भी, वो भी साथ, लेकिन हालत उसकी देखी उसी तरह से जो पहले देखी कई बरस पहले। तो हैरान हो गया राजा कि ये क्या बात बनी, तो इसको तो चंदन का बाग दिया था, पूछा क्या बात, तुझे वो बाग दिया था। कहने लगे बिल्कुल, मैं तो इतना खुश, पहले तो इतना अच्छा सिलसिला चलता रहा, मैं काट काट कर उसको जलाता रहा, मैं आगे बेचता रहा लकड़ी के भाव, जैसे लकड़ी का जो रेट चलता है। तो राजा एकदम से परेशान हुआ, कहने लगा ऐसा बदकिस्मत है, ऐसा मूर्ख है, वो साधारण लकड़ी का बाग नहीं था, वो चंदन का बाग था, और एक छोटे से टुकड़े को भी बाज़ार में बेचने जाएं तो उसकी कितनी कीमत मिलती है, और तूने उसको जला जला कर यूं ही ख़त्म कर दिया, तो तेरी कंगालता कहाँ दूर होनी थी। तो बाग तो चंदन का मिला था लेकिन उसकी क्या कदर डाली, क्या कीमत जानी। इसी प्रकार से जन्म तो इंसानी मिला लेकिन इसकी क्या कदर की इंसान ने, वही तो किए चले जा रहा है जो पशु पंछी जानवर करते हैं, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नन में ज्ञान बिना पशु जान। कि तूने भी यही कीमत डाली कि केवल बस इनका सेवन कर लेना है, ये भोग कर लेने हैं और इस प्रकार से ये मायावी खेल खेलते हुए, दुनियावी खेल खेलते हुए ही ये सारी उम्र बिता देता है। तो महापुरुष चेतावनी देते हैं कि इंसान जितनी देर तेरे श्वास हैं अभी भी तू संभल जा, अभी भी तू जागरूक हो जा, अभी भी देर हुई है, अभी अंधेर नहीं हुआ है, देर ज़रूर हुई है, जागा नहीं, लेकिन अब तो जाग जा, अब तो संभल जा, अब तो आधार बना ले इसको, अब तो नाता जोड़ ले इसके साथ अपना, अब तो बोध कर ले इसका, इस परम अस्तित्व का, ताकि तेरे जीवन की असली कीमत पड़ जाए। ये तूने ही डालनी है, मालिक ने तो जन्म देकर तेरे जीवन को कीमत दे दी, लेकिन अब तेरे पे निर्भर है कि तू इस जीवन का क्या करता है। तो ये तेरे ऊपर ये निर्भर है। और महापुरुष जगाते हैं, साधन बनते हैं इंसान को एहसास कराने के लिए, इंसान को जागरूक करने के लिए, इसका नाता इस सत्य के साथ जोड़ने के लिए। और जो फिर संतों का संग करके, संतों की बात को मानकर इस कदर इस सत्य के साथ जुड़ जाता है, वो अपने जीवन की कीमत डाल लेता है और यहाँ पर मुख उजला करके जाता है, बोझ साथ नहीं लेके जाता है, देनदारी लेके नहीं जाता है, यहीं पर ही वो इस संसार में लक्ष्य को पाकर एक सत्य का बोध हासिल करके आवागमन के बंधन से छुटकारा पा जाता है। और ये जीवन का सफ़र भी फिर उसी जागृति के साथ ये नाता जोड़कर वो तय करता है। फिर वो जीवन एक सुंदर जीवन होता है, एक अमृत वाला जीवन होता है। तो यही महापुरुष संत जनों ने चाहा, यही संदेश और पैगाम ये युगों युगों से दिए हैं और आज भी यही संदेश दोहराया जा रहा है, सबको पुकारा जा रहा है। गढ़वाल के या इस इलाके में, अक्सर कुमाऊं के इलाके में बीच में वक्फे ज़्यादा होते हैं, उत्तराखंड के उस इलाके में कभी 4 साल का, कभी 5 साल का गैप पड़ जाता है, लेकिन गढ़वाल के इलाके में तो क्योंकि देहरादून मसूरी में हर साल आना होता है, काफ़ी समय मसूरी बिताने को मिलता है और मसूरी से ही गढ़वाल के कई कई स्थानों के ऊपर जाने का अवसर मिलता है। और वहाँ पर चारों तरफ जब देखा जाता है, आज भी उसका जिक्र हुआ, कल भी जिक्र हुआ कि कितने कितने भ्रम और भ्रांतियाँ हैं, कितने अंधकार में लोग कैसी कैसी मान्यताओं से युक्त होकर अपने इस जन्म को व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं। जो संदेश वेदों शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, गुरु पीर पैगंबरों के द्वारा दिया गया, उस तरफ तो ज़रा सा भी एक कदम नहीं बढ़ रहा और एक अज्ञानता के अंधकार को ही ढोते चले जा रहे हैं। और महापुरुष संत जन पैगाम दे रहे, जो पहले भी कभी ये निमंत्रण हर युग में दिए गए कि करूँ बिनंते सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरी लाहा, आगे बसे सुहेला। कि ये पहले भी निमंत्रण दिए गए कि हे मेरे मीत, हे मेरे मित्र, ज़रा गौर कर, करूँ विनंती कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, वरना क्या गर्ज है। दुनियावी गर्ज भी इंसान ने पूरी करनी हो तब भी वो प्लीज़ शब्द नहीं इस्तेमाल करेगा, ऐसा बोलेगा शायद उसका हक है। और यहाँ तो भक्तों ने अपना तो कल्याण कर लिया, लेकिन फिर भी विनती कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि इंसान अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, लोक और परलोक बिगाड़ रहा है। इसीलिए वो विनती भी कर रहे हैं कि करूँ विनंती सुन मेरे मीठा, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरी लाहा, आगे बसे सुहेला, कि यहाँ पर ऐसा लाभ प्राप्त कर लो संतों का संग करके कि आगे भी सुहेला बसना हो इस आत्मा के लिए। तो ये लोक और परलोक दोनों संवारने के लिए इस तरह से भक्त संत महात्मा ये संदेश और आवाज़ ये पुकार पुकार कर दे रहे हैं। और गढ़वाल की इन वादियों में भी लगातार आप महापुरुष जो ये निमंत्रण दे रहे हैं कि आवा आवा, तुम भी आवा, कि आओ और ये जीवन काल में ही जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लो, ये सत्य से नाता जोड़ लो। और वाकई जिन्होंने आपकी पुकार को सुना उन्होंने ही अपनी जन्मों जन्मों की अज्ञानता को दूर कर लिया, भ्रम और भ्रांतियों से निजात पा लें और लक्ष्य की पूर्ति कर लें। तो इस तरह से महापुरुष संत जनों की ये पुकार ये कब नहीं रही है, अभी भी सारे युगों का जिक्र हुआ है। कौन सा युग ऐसा जबकि इसकी पुकार नहीं दी गई, कब इस तरफ ध्यान नहीं दिलाया गया। लेकिन इंसान ही ऐसा है जो इस प्रकार से इस पहलू की अनदेखी ये करता आया है और इसलिए इसका उद्धार नहीं हो पाता। और फिर जम जम मरे मरे फुन जम में बहुत सजाए प्या देश लम्बे कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ, इस प्रकार से ये इस बंधन में पड़ा रहता है और हर उस जन्म के साथ आत्मा को भुगतान करना पड़ता है। तो महापुरुष संत जन यही संदेश देते आ रहे हैं कि इंसान जुड़ जाए सत्य के साथ। ये सत्य ईश्वर पारब्रह्म परमात्मा है, ये निराकार है, ये अकाल पुरख है, ये निर्मल है, ये पावन है, ये अडोल है, ये चंचल है, ये शांत है, ये एक रस है, ये अजन्मा है। तो ऐसे परम तत्व इस परमात्मा ईश्वर का बोध हासिल कर ले हे आत्मा, और हे मन तू भी इसी ज्ञान की रोशनी से युक्त हो जा, ताकि एक तेरा जीवन सही मायनों में एक जीवन बन जाए। वरना तो केवल सांस ले रहा है और केवल सांस लेने को जीवन नहीं कहा जाता है। सही मायनों में जीवन जी ले और वो होगा संभव तभी अगर वाकई इसको आधार बना लेगा, इस सत्य को आधार बना लेगा तो तेरा जीवन जीवन कहलाएगा। वरना चलती फिरती लाशें तो बहुतेरी हैं इस संसार में, जिनके प्राण भी हैं, नब्ज भी है, दिल की धड़कन भी है, लेकिन मृतक से ज़्यादा नहीं है कुछ भी वो। इसीलिए पहले भी गुरु साहिबानों ने कहा कि मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत, कि वो मृतक ही है, चलती फिरती लाश है। लाश में धड़कन नहीं होती, ना नब्ज चलती है, ना सांस होते हैं, लेकिन यहाँ पर चलती फिरती लाश उसको कहा गया है जो ये सांस होते हुए भी इस कदर जीवन जी रहा है, धरती पे बोझ बना हुआ है, जो इस तरह से अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे रहा है, वो चलती फिरती लाश है। तो जीवन जीवन बन जाए, जीवन जीवन कहलाए, इसके लिए इस परमात्मा ईश्वर निराकार से नाता जोड़ना लाजिम है, इसको आधार बनाना लाजिम है, इसको हृदय में बसाना लाजिम है। क्योंकि जहाँ पर इसके अनेकों गुण गुण गिनवाए गए कि ये शांत है, चंचल है, ये एक रस है, ये स्वयंभू है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है, वहाँ पर ये प्रेम का स्रोत भी है, ये प्रेम का रूप भी है। और जब इसको हृदय में बसा लिया, यानी कि प्रेम का हृदय में बसना हो जाता है, और जब प्रेम का हृदय में बसना हो जाता है फिर जीवन की यात्रा प्यार के तहत तय होती है। एक जागृति वाला वो जीवन, फिर बाकी का सफ़र, पहले जो बीता सो बीता, उसमें हम कुछ कमती बढ़ती नहीं कर सकते हैं, जो बीत गया सो बीत गया। अभी भी जहाँ पर हम यहाँ ऋषिकेश में एक जगह के ऊपर गंगा के किनारे खड़े हो जाएं, हमारे सामने से जो पानी गुजरेगा, बिल्कुल सामने से गुजरेगा, वो गुजरा तो गुजर गया, उसके बाद फिर नई लहरें ही आती हैं, वो गुजर गया, आगे निकल गया। यानी कि कहने का भाव यही है कि जो बीता सो बीता, वो मुड़ के आने वाला नहीं है, उसमें कुछ भी आप फेर बदल नहीं कर सकते हैं, कुछ कमती बढ़ती नहीं कर सकते हम। हाँ, हम जागरूक हो जाएं अगर, तो जो पहले सोए हुए थे अब जाग जाने के बाद जागृति वाला जीवन हो जाएगा। पहले भटकते रहे थे, अब मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से पहले एक सांसारिक प्रवृत्तियां प्रबल थीं, अब वो भक्ति भावनाएं, एक मानवता इंसानियत वाली भावनाएं, अब उसके तहत बाकी का सफर तय होगा। तो इसलिए इंसान, अगर तू अतीत का कुछ भी नहीं कमती बढ़ती कर सकता, फिर तो वर्तमान के ऊपर तुझे केंद्रित होना होगा। और अगर वर्तमान को इस कदर तू संभाल लेगा, तो फिर आगे वाला समय भी तेरे लिए मुबारक हो जाएगा। वही बात के यहाँ खाट चलो हरी लाह, आगे बसे सुहेला। फिर ये दोनों ही जहान तेरे ये सवर जाएंगे। तो अव सात संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों ने यही संदेश, यही पैगाम ये हर मानव को दिया है, चाहे वो गढ़वाली भाषा, कुमाऊँ भाषा बोलने वाले हों, चाहे वो हिंदी, पंजाबी, सिंधी बोलने वाले हों, कोई भी भाषा वाले हों, किसी जगह के रहने वाले हों, किसी संस्कृति, किसी मुल्क के बाशिंदे हों, हर इंसान के लिए ये पहलू महत्ता रखते हैं। इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन कौन सी भाषा बोलता है और कौन कौन सा पहरावा पहनता है, कौन से कुटुंब में पैदा हुआ है, इससे कोई सरोकार नहीं है। केवल बात आत्मा की और मन की है, इनको रोशन करना है, इनको सजाना है, इनको संवारना है। यही एक, इस बात के ऊपर सारा दारोमदार टिका हुआ है। ना आपकी कोई जाति या आपकी कोई भाषा आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ऊंचाइयों तक जाने के लिए यही एक साधन अपनाना, ये अवस्था प्राप्त करना, ये लाजिम हुआ करती है। और यही फैसले हर युग में दिए गए हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये यही फैसले आज भी लागू हैं। और ध्यान देने लायक बात इतनी है कि वाकई हम इस तरफ बढ़ चलें, इस जागरूकता को प्राप्त कर लें, ये नाता जोड़ लें, ये जीवन में अपने सवेरा कर लें। ये सूरज चढ़ा हुआ है, हम फिर भी सोए ना रह जाएं, रोशनी से लाभ उठाएं, अपने जन्म को सफल करें। और जैसे कल कहा कि इसी जागृति के हो जाने के कारण सारे भेदभाव मिट जाएंगे, ये सारे तकरार के कारण मिट जाएंगे, इस एक को जीवन में ले आने के कारण। और वो सरल, सबसे आसान जो मिसाल जहन में आती है, उसको कई दफ़ा दोहराया गया कि इसी बात को स्पष्ट रूप में सामने रखने के लिए वो मिसाल का सहारा कई कई दफ़ा लिया गया है। किस एक के जीवन में आ जाने से, मिसाल वही आती है कि रेगिस्तानी इलाके में एक बुज़ुर्ग रहता था, उसके तीन बेटे थे। और वो बेटे एक समय ऐसा आया कि वो तीनों के तीनों वो कहीं गुजरान के लिए अपने गांव से दूर चले गए। और ये बुज़ुर्ग पिता, इसको महसूस हुआ कि अब थोड़े से ही दिन मेरे हाथ में हैं, ये शरीर तो बिल्कुल गिरता जा रहा है, ये बीमार, ये रोगी काया ज़्यादा देर साथ देने वाली नहीं है। तो उसने अपने मित्र को बुलाया, कहा कि तू मेरा जवानी की उम्र से मित्र है, दुख सुख में हम एक दूसरे के शामिल हुए हैं, और भरोसा मुझे तुझ पे ही है और किसी पे नहीं। तो मेरा एक काम करना कि मेरे बेटे पता नहीं कब लौटेंगे, तो मैं जा रहा हूँ इस संसार से चंद दिनों का मेहमान, तो तो मेरा एक काम करना कि बेटे लौटे तो उनमें मेरी जायदाद बांट देना, बड़े बेटे को आधा हिस्सा दे देना, दूसरे को चौथा हिस्सा दे देना, तीसरे को पांचवा हिस्सा दे देना। तो निर्देश देखकर उसने आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए, और बेटे लौटे और वो दोस्त उन बेटों को मिला, कहा कि आपके पिताजी तो चले गए संसार से, लेकिन मुझे कुछ जिम्मेदारी दे गए, और वो जिम्मेदारी यही है कि जो जायदाद है वो आप तीनों में बांटनी है, किस रेशो में बांटनी है वो भी मुझे बता गए हैं। और ज़मीन का टुकड़ा था वो उसी हिसाब से उसने लकीर खींच दी कि बड़े बेटे को आधा हिस्सा, दूसरे को चौथा हिस्सा, तीसरे को पांचवा हिस्सा। वो तो ज़मीन का टुकड़ा तो लकीर खींच कर बांट दिया, लेकिन और भी जायदाद का हिस्सा रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट हुआ करते हैं, तो उसके पास 19 ऊँट थे। अब ऊँट बांटने हैं उसी रेशो में, तो पहले बेटे को आधा हिस्सा बांटना है, तो 19 ऊँट का आधा कैसे किया जाए? अगर 18 होते तो 9 सीधा आधा हो जाता, अब 19 हैं तो क्या एक ऊँट को काटें, काट कर उसको आधा करें? ये तो मूर्खता होगी। तो बड़ा परेशान कि दूसरे दो बेटों की बारी तो बाद में आएगी, ये तो पहले ही गेर अड़ गया, ये तो मसला बन गया बहुत। तो बड़ा परेशान, और भी दिमाग लगा रहे हैं, लोग इकट्ठे हो गए, किसी को हल सूझ नहीं रहा। इतने में देखते हैं कि एक इंसान दूर से चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, ऊँट पे सवार रुका, ऊँट पे बैठे बैठे पूछा, क्या मसला है, आप इकट्ठे सारे बड़े परेशान नज़र आ रहे हो? उसको मसला बताया कि इस तरह से ये बांटने हैं 19 ऊँट, और बड़े बेटे को आधा हिस्सा देना था, तो 19 ऊँट का आधा हो नहीं रहा है। तो वो समझ गया, और वो इंसान कहने लगा कि मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैं मसला हल कर सकता हूँ। अच्छा, नेकी और पूछ, हम तो पहले ही बड़े परेशान हैं, आप हल कर दो। तो कहने लगा, ये 19 ऊँट हैं, तो जिस ऊँट पे मैं सवार होकर आया हूँ मैं इसको बीच में शामिल कर दूँ? कहने लगे, हमें तो मसला हल होने से मतलब है, बेशक करो। तो कहने लगे, अब 20 हो गए, अब इसको आधा आधा हिस्सा कहते, 10 होते हैं, 20 का आधा 10, ये बड़े बेटे को दे दो, दूसरे को चौथा हिस्सा देना है, 20 का चौथा हिस्सा कहते 5 दूसरे बेटे को दे दो, तीसरे को 20 का पांचवा हिस्सा देना है, तो 20 का पांचवा हिस्सा 4 होता है, तीसरे बेटे को 4 दे दो। तो कितने हो गए, पहले को 10, दूसरे को 5 15, तीसरे को 4 19 हो गए? कहते हाँ। कहते 20वां मेरे पास मेरा ही रहा, यानी कि इसको शामिल करके मसला हल भी हो गया और ये कायम रहा। इसी प्रकार से ये निराकार को, इस सत्य को जीवन में ले आने से वो मसले भी जन्म मरण के और इस जीवन काल के समाप्त हो जाते हैं, और ये निराकार फिर भी उसी तरह से कायम रहता है। ये शामिल भी हो गया और ये कायम भी रहा, लेकिन संसार इसी को अपनाने को तैयार नहीं है, बल्कि इसी को बांटने में लगा हुआ है। वहाँ तो शामिल करके मसला हल कर दिया गया, यहाँ तो इंसान इस परमात्मा को ही बांटने में लग गए हैं, इसको ही बांटते जा रहे हैं, पैगंबरों को बांटते जा रहे हैं, बांटते ही जा रहे हैं, दीवारें ही खड़ी करते जा रहे हैं, अज्ञानता के प्रमाण दिए चले जा रहे हैं। तो महापुरुष संत जन चेतावनी देते हैं, ये सुचेत करते हैं कि हे इंसान, तुझे मालिक ने उत्तम जन्म भी दिया है, तुझे सोचने समझने की ताकत भी दी है, लेकिन तू उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और तू अगर जाग जाए तो फिर तेरा ये संसार में आना सफल भी हो जाएगा, ये तेरी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा, तेरे जीवन को सुंदर रूप मिल जाएगा, तू औरों के लिए भी, इस धरती के लिए भी तू वरदान बन जाएगा। तो इस तरफ हर कोई गौर करे, इस तरफ अपने कदम बढ़ाए, यही एक भाव से ये संदेश दिए जा रहे हैं, ये शुभकामनाएं दी जा रही हैं, ये प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि दातार कृपा करे कि सबको सुमति मिले, सबको जागरूकता प्राप्त हो, सभी इंसानी चाल को चलें, सभी मानवता के धर्म की पालना करें, सभी प्रेम भाव से युक्त हो जाएं, छोड़ दे दामन वैर घृणा ईर्ष्या नफरत का, जिसने नुकसान ही नुकसान किए हैं इतिहास गवाह है। इस रास्ते को तजे, इस वैर ईर्ष्या नफरत की आग से ना जले ना जलाए, ये एक प्यार के मार्ग को अपनाए और प्यार पूर्वक इस जीवन के सफ़र को तय करें, ये राहत देने वाला बने, ये मरहम का रूप बने, ना कि जख्म देने वाला रूप बने, इस प्रकार से ये शुभकामनाएं भी की जा रही हैं, ये प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं कि दातार सुमति दे सभी को, ये कुमति में आ चुका है, इसलिए सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, इसको सुमति प्राप्त हो ताकि ये बिगाड़ से बचाव हो और इस कदर ये अपने जन्म को सफल करे, जीवन के म्यार को ऊंचा करे, ये होता ही संतों के संग के द्वारा है, वरना ये मुमकिन नहीं है। ये ऊंचाइयां तभी प्राप्त होती हैं अगर संतों की मत को, संदेश को, आदेश को अपना लिया जाता है, गौर कर लिया जाता है, तब मुमकिन होता है उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का, वरना तो इंसान गिरता ही जाता है, पतन की ओर ही इसकी यात्रा होती है। तो महापुरुष पहले भी बचाते आए हैं, उभरते आए हैं, भव सागर से पार उतारते आए हैं और आज भी संत महात्मा यही योगदान ये संसार को दे रहे हैं, यही एक देन दिए चले जाएं सभी, यही एक शुभकामना, यही अरदास प्रार्थना है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है और उत्तराखंड के इस प्रथम समागम का भरपूर सभी ने आनंद ये प्राप्त किया है, बहुत खुशी हासिल हुई। प्रबंधक महापुरुषों जिनको जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने भी सुंदर ढंग से इसका आयोजन किया, सेवा दल के अधिकारी चाहे केंद्र के हों या यहाँ इलाके के हों या फिर तमाम जवान बहनों के रूप में, भाइयों के रूप में, तमाम साथ संगत ने इस प्रकार से जो एक योगदान दिए हैं, जिसके कारण ये एक सुंदर रूप ये यहाँ पर बना है। और ऐसा ही सुंदर रूप केवल एक मैदान और एक पंडाल तक सीमित ना रहे, ये सुंदर रूप कुछ भावनाओं के कारण है, तो वो भावनाएं सीमित ना रह जाएं, वो भावनाओं को ऐसा फैलाव मिले कि चारों तरफ ही सुगंधित हो जाए वातावरण, चारों तरफ एक प्यार ही प्यार हो, इस कदर चारों तरफ ये प्रेम की गंगा बहती चली जाए, ये खून की नदियां ना बहाई जाएं, ये खून की होली ना खेली जाए, इस प्रकार से ऐसी एक सुमति दातार सभी को ये प्रदान करे, यही शुभकामना, यही अरदास, इसी प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन्यवाद।